हम संतान एकता का है वरदान
एकता की हम संतान एकता का है वरदान
हम सब रंग बिरंगे फूल हैं एक बीज की हम पहचान
एकता की हम संतान एकता का है वरदान
शांति। एक किसान के पास एक बैल था और एक हल, और बहुत खुशी खुशी से वो खेती करता था। उसका जो हल था उससे भी उसका बहुत प्यार था। उस हल की पूजा वो करता, तीज त्योहार के दिन उसे अच्छे से सजाता, रोज उसको सफाई करता, उसको भी सजाता, और उसका जो बैल था उसको भी बहुत प्यार करता था, और उस बैल को भी बहुत अच्छे से सजाता था, धुलाई करता था, अच्छी अच्छी घास चारा उसे खिलाता था, और जो फसल आती थी वो भी बहुत अच्छी आती थी। एक बार हल और बैल में लड़ाई हो गई। उस बैल ने कहा कि सारा काम तो मैं ही करता हूं, खेत में ये जो फसल आ रही है ये सब मेरी वजह से है, अगर मैं ना होता तो ये फसल ही नहीं आती। हल को भी घमंड हो गया। उस हल ने कहा, तुम क्या करते हो, सिर्फ टहलते रहते हो खेत में, मेन कार्य मुख्य कार्य तो मैं करता हूं, जुताई का खेत की। तो जब झगड़ा बहुत बढ़ जाता है तो किसान के पास जाते हैं, तो किसान को तो दोनों से प्यार रहता है, और किसान कहता है ठीक है एक काम करते हैं, वो दोनों को ले जाता है और बैल को कहता है कि आज तुम अकेले ही खेत की जुताई करो, और वापस आ जाता है। तो बैल बहुत खुश हो जाता है कि आज मैं दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं। तो अकेला सारे दिन भर वो खेत पर चलते रहता है, पर जुताई कुछ होती नहीं है खेत की। शाम को जब किसान आके देखता है तो कुछ नहीं कहता, उसको ले आता है। दूसरे दिन उस हल को कहता है कि आज तुम यहां पर सब कुछ करो, और उस हल को वहां गाड़ देता है। हल को बहुत घमंड था कि रोज धरती की छाती फाड़कर मैं ही जमीन को ऊपर लाता हूं। तो किसान फिर चला जाता है। उस दिन तो हल हिल भी नहीं पाता तो सारा दिन पड़ा ही रहता है, और खेत वैसे के वैसे ही। शाम को वो किसान आता है, तो हल, बैल और किसान, और वो उनको समझाता है कि जब तक हम तीनों एक साथ काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। हल की भी आवश्यकता है तो, बैल की भी आवश्यकता है तो, किसान की भी आवश्यकता है। जब तक तीनों नहीं मिलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए जब खेती बैल और हल से होती थी किसी जमाने में, अभी पता नहीं किससे होती है, अभी मशीन से होती है तो इन तीनों की जोड़ी का बहुत गायन है। और हल क्या करता है जमीन में? हलचल करता है। तो हल क्या करता है? हलचल करता है। तो एक है जमीन, लैंड, एक है हल, एक है हलचल, और फिर है बीज, और फिर है फसल। इतनी चीजें हैं। जमीन है संसार की आत्माओं की बुद्धि, हल है समय, हलचल है यही है यही है यही है। बाबा बात कर रहे हैं मीटिंग में आए हुए भाई और बहनों से, संडे की अव्यक्तवाणी पर, कल की, आने वाले कल की मीटिंग में जो भाई बहने आए हैं उनसे बात कर रहे हैं। जमीन क्या है? संसार की जो आत्माएं हैं उनकी बुद्धि। हल कौन सा है? समय ही हल है, और समय हलचल करेगा। और हलचल कौन सी है? हलचल का नाम है यही है और दूसरा कोई नहीं है, बस यही है। और बीज क्या है? अनुभव। उन आत्माओं को पहले तो क्या करो, समय हल चला देगा, हलचल होगी, बीज डालो फिर अनुभव का, और फिर क्या होगी? फसल। फसल अर्थात प्रत्यक्षता। प्रत्यक्षता के भी कुछ रूप मुरली में बताए हैं। प्रत्यक्षता अर्थात अभी वाह वाह करते हैं फिर बनेंगे वारिस, अभी भागते हैं, अभी कहते हैं ये भगाने वाले, फिर कहेंगे ये बचाने वाले, ये है प्रत्यक्षता, वो प्रत्यक्षता होगी। तो आज हम चर्चा करेंगे, टॉपिक है हलचल का हल, शांति का तीर, सोने में नग, एक संकल्प की ईंट और अनुभूति का झरना। पांच चीजें हैं, इतना बड़ा टॉपिक है, तो इतनी पांचों चीजें वो जो मीटिंग के भाई बहने हैं जिनसे बाबा मुलाकात कर रहे हैं उनको बाबा ने कही। तो शुरुआत में बाबा ने कहा कि अब समय है हलचल की का हल चलाने का, ये हल तुमको चलाना है। किसान कौन है? शिव बाबा या हम? हम हैं रूहानी किसान, स्पिरिचुअल फार्मर्स। ये भी चिंतन का बहुत अच्छा विषय है, स्पिरिचुअल फार्मर, स्पिरिचुअल फार्मिंग क्या होता है, यहां पर कभी चर्चा की थी, स्पिरिचुअल हॉर्टिकल्चर। जमीन बाबा ने कहा बुद्धियों में हलचल होगी, तो बुद्धि वो जमीन है, उस जमीन में हलचल करनी है। समय पहले ही हलचल कर रहा है, और हलचल कौन सी है? यही है यही है यही है, और दूसरा कोई नहीं है। पहले कहते थे ये भी हां वो भी हां ये भी हां, ये भी हमारे जैसे। एक हमारे एक डॉक्टर आए थे बहुत पहले, कोई लेके आया था उनको, हम तो यहीं मिले आने के बाद, तो वो सीधा अव्यक्त बाप दादा से उनको मिला दिया। बाद में उन्होंने अनुभव सुनाया, हां बिल्कुल सेम, हमारे गुरु जी भी ऐसे ही है, आपकी जो दादी बैठी थी ना सेम, हमारे गुरु और वो एक ही थे। सेम वही अनुभव। और फिर वो योग करने गए, एक घंटा सो गए बाबा के कमरे में, और फिर कहा कि बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बाबा ने कहा हलचल हो जाए। हलचल क्या है? यही है। कौन कौन सी बातें यही है? सौ बातें बताओ। वो कौन कौन सी बातें हैं जो यही है, यही है और यही है और दूसरी कहीं नहीं है? निखिलेश भाई कौन से है? शुरू करो सबसे पहले तो ज्ञान। संसार में जो ज्ञान है सच्चा ज्ञान यही है। ऐसा ज्ञान और कहीं नहीं मिल सकता जो आज तक ज्ञान सुना, जो शास्त्रों में ज्ञान लिखा है, जो भक्ति मार्ग का ज्ञान है, जो सारे धर्मों का ज्ञान है, वो इस ज्ञान के सामने तुच्छ है जब तक ये अनुभव। ऐसा नहीं, हाँ यहां पे भी वो है, हमारे इधर भी वही है, यहां पे भी वैसा है, हमारा भी वैसा ही है, ठीक ठीक है। हम दोनों का ठीक ठीक नहीं, यही है, ये अनुभूति है, ये है प्रत्यक्षता, यही फाइनल है। ये पर्दा खुलना चाहिए, बुद्धि के कपाट यहां खुल जाना चाहिए कि यही वो ज्ञान है। हाँ हमारे पास भी ब्रह्मचर्य का ज्ञान है, हाँ हमारे पास भी प्यूरिटी बहुत अच्छी है, हम भी योग करते हैं। नहीं, यही ज्ञान है, यही योग है। हमारा योग भी ऐसा है, हम भी योग करते हैं। आप लोग आंखें खोल के करते हो, हम आंखें बंद करके करते हैं, और कुछ कुछ लोग है वो आंखें खोल के भी करते हैं। संसार में ऐसे भी बहुत योग है जो आंखें खोल के योग करते हैं, परंतु यही योग है। तीसरा इसमें बहुत सारे आगे पर बोलते जाओ, भगवान यही है, उसका यही रूप है, उसका वो रूप नहीं है। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी, ये उसका रूप नहीं है कि वो सर्वत्र है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठति अर्जुन, हे अर्जुन ईश्वर हर हृदय में विराजमान है, आत्मा भी है और परमात्मा भी है। वो चित्र देखा है एक व्यक्ति का, किताबों में होता है, यहां आत्मा उसके बाजू में परमात्मा, दोनों कंबाइंड। और गीता में भी लिखा है ईश्वर सर्वभूतानि हृदय तिष्ठति अर्जुन, यही है, यही उसका रूप है। कौन सा उसका रूप है? निराकार उसका रूप है। वो कहां रहता है? कहां? न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा निवर्तन्ति तद्धामम परमम मम। हे अर्जुन उस धाम में जाकर जो वापस नहीं आता वो मेरा धाम है, जहां शशांक सूरज रवि शशि कुछ नहीं है, वो मेरा धाम है, वो स्वयंभू है, वो मेरा धाम है। तद धामम, भगवान वहां रहता है, भगवान यहां नहीं है, भगवान वहां है। ब्रह्मांड ये नहीं है, संसार वालों ने इसको ब्रह्मांड कहा, ये जो दिख रहा है ये सब ब्रह्मांड है, पर ये ब्रह्मांड नहीं है। ब्रह्मांड वो है, ऊपर है ब्रह्मांड, इसको ब्रह्मांड कहा। जब ये उनको पता चल जाएगा तब ये प्रत्यक्षता होगी। वो इसी को ब्रह्मांड समझते हैं, ये जो कायनात है, ये जो सृष्टि है। तो परमात्मा उसका रूप, उसका वो क्या करता है, सब कुछ वही करता है, वही सोई जो राम रचि राखा, सब कुछ वही करता है। और राम कहता है मैं कुछ करता ही नहीं, राम कहता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो कर्म है उसके हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिक मशीनरी है, मैं कुछ नहीं करता। कितना भेद है, परमात्मा के कर्तव्य, परमात्मा का रूप, परमात्मा के नाम। वो कहता है मेरे बहुत वो नाम, मेरे अलग नाम है, मेरा एक ही नाम है, वो मेरा नाम है शिव। तो उसका नाम, उसका रूप, उसका धाम, उसके कर्तव्य, उसका आना, उसके आने की तारीख कब आता है? वो युगे युगे नहीं आता। क्या करने आता है, किससे मिलता है, पढ़ाता है, ये कभी सोचा नहीं था वो आएगा। तो परिवार की स्थापना करता है तो बिल्कुल भी खबर नहीं थी। मधुबन, फिर मधुबन की बातें हैं, ये प्रत्यक्षता होगी कि मधुबन ही क्या है। रामचंद्र भाई मधुबनी क्या है? मधुबन ही तीर्थ है, मधुबन ही लाइट हाउस है, मधुबन ही ओम शांति भवन है, मधुबन ही ग्लोबल हॉस्पिटल है, मधुबन ही दिलवाड़ा है, मधुबन ही गुरु शिखर है, मधुबन ही लाइट हाउस है, मधुबन ही शीश महल है, मधुबन ही विशाल भवन है, मधुबन ही कुंज भवन है, मधुबन ही इंद्रप्रस्थ है, मधुबन ही टीचर ट्रेनिंग सेंटर है, मधुबन ही वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज है, मधुबन ही मौजों की भूमि है, मधुबन ही सुखधाम है, मधुबन ही तपस्या भूमि है, मधुबन ही तपोभूमि है, मधुबन ही तपस्या कुंड है, मधुबन ही मधुर भूमि है, मधुबन ही परमात्मा अवतरण भूमि है, मधुबन ही परिवर्तन भूमि है, मधुबन ही विश्व का स्वर्गाश्रम है, मधुबन ही शांति सरोवर है, मधुबन ही ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, मधुबन ही ज्ञान विज्ञान भवन है, मधुबन ही विश्व का बेहद का एयरपोर्ट है, बेहद का धोबी घाट है, मधुबन ही सुदर्शन भवन है, मधुबन ही संसार का ब्यूटी पार्लर है, मधुबन ही बेहद का क्लब है, मधुबन ही मुक्ति जीवन मुक्ति का धाम है, मधुबन ही आखिरी अंतिम हट्टी है, द फाइनल सुपरमार्केट, मधुबन ही पासपोर्ट मिलने का स्थान है, मधुबन ही सच्चा सच्चा हरिद्वार है, मधुबन ही सच्चा सच्चा वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, मधुबन ही एरोड्रोम है, मधुबन ही गेटवे ऑफ द वर्ल्ड, मधुबन ही वर्ल्ड पावर सेंटर, मधुबन ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मधुबन ही स्टेशन है, मेन स्टेशन है, मधुबन ही कर्म भूमि है, ब्रह्मा की कर्म भूमि, ब्रह्मा की कर्मातीत भूमि, मधुबन ही ब्राह्मणों का घर, मधुबन ही ब्राह्मणों का अंतिम ठिकाना, संसार का अंतिम ठिकाना, मधुबन ही रासलीला का स्थान है, मधुबन ही वृंदावन है, मधुबन ही मथुरा है, मधुबन ही सबसे बड़ा तीर्थ है, मधुबन ही सबसे बड़ी तीर्थ स्थान है, वन्य भूमि पनपंत पार, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा, जहां पर नाथ ने पाव धरे है, ये उसके पैर रखने का स्थान है, मधुबन ही मधुबन है, मधुबन ही अश्लम है, मधुबन ही काशी है, मधुबन ही जेरूसलम है, मधुबन ही ब्राह्मणों का प्राण, मधुबन ही भंडारा, अभी तो कुछ भी नहीं हुए और 1000 नाम बाकी है, मधुबन ही शांतिवन का चक्कर लगाना और जितने हॉल है वहां पे त्रिमूर्ति भवन से लेके सारे 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 वो सब मधुबन के नाम है, तो ये संसार में प्रत्यक्ष होगा, यही है और यही है, तो मधुबन की प्रत्यक्षता होगी, फिर हमारी प्रत्यक्षता होगी कि यही वो आत्मा है जिन्होंने भगवान को जाना, यही वो आत्मा है जो संसार के आधार मूर्त उद्धार मूर्त, यही वो आत्मा है जो संसार के सबसे बड़े है, बुजुर्ग है, पूर्वज है, पूज्य है, पूजनीय है, यही वो आत्मा है जिनकी उपस्थिति मात्र से संसार थमा हुआ है, यही वो अल्लाह लोक है, यही वो फरिश्ते हैं, यही वो देवता है, यही है वो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, यही वो देवियां है जो उधर दुर्गा रूप में बैठी हुई है, यही वो शिव शक्तियां आ गई है, चैतन्य शालिग्राम यही है, यही है, यही है, यही है, ये वो सॉल्वेशन आर्मी है, तो ब्राह्मणों की प्रत्यक्षता, मधुबन की प्रत्यक्षता, ज्ञान की प्रत्यक्षता, योग की प्रत्यक्षता और आत्माओं की प्रत्यक्षता, और क्या यही है होगा अंत में धर्म, सच्चा सच्चा धर्म ये है, वो संसार में जो धर्म है वो नहीं है, ये सच्चा सच्चा धर्म है, सच्चा सच्चा सत्संग ये है, सत्संग की प्रत्यक्षता, धर्म की प्रत्यक्षता, हजार बातें हैं, कितनी निकाल सकते हैं, निकालो, सारा दिन चिंतन में लग जाओ बैठो तो कितनी हजारों बातें निकल जाएगी, जब बिना चिंतन की इतनी निकली है तो चिंतन करेंगे तो कितनी निकलेगी, और कोई लिखने बैठ जाए तो ग्रंथ लिखा जाए यहां वहां से देख देख कर, तो हलचल की का हल, तो ये है हलचल। हलचल अर्थात यही है, और हल है समय, और किसान है हम, और जमीन है संसार की आत्माओं की बुद्धि, और बीज है उनको अनुभव। अब दूसरी बात है, बाबा ने कहा शांति का तीर चलाओ, ऐसा शांति का तीर चलाओ कि शांति के सागर के बिना वो रह ही ना सके, ऐसी अवस्था हो जाए उनकी। इतनी शांति का ऐसा तीर चला दो, तो शांति का तीर चलाना है हमको। बाबा ने कहा है भाषण ऐसा करो कि भाषा से परे चले जाए, आवाज में ऐसे आओ कि वो आवाज से परे चले जाए। तो शांत, प्यार तो बहुत है, पर अब प्यार में एक एडिशन करो शांति और शक्ति की। ये शांति का तीर चलाओ, ये आत्माओं को शांति चाहिए, आत्माओं को शब्द नहीं चाहिए। शब्द बहुत सुन लिए, शब्द सुन सुन के तो थक गए, कितने शब्द सुनेंगे, शब्दों की भीड़ और शब्दों का कोलाहल उनको नहीं चाहिए, उन्हें निशब्द का मौन चाहिए, निस्तब्ध का अनुभव चाहिए, उन्हें बेआवाज का आवाज सुनना है, ये इसकी आवश्यकता है आत्माओं को। तो दूसरी बात थी शांति का तीर। तीसरा है सोने में नग। बाबा ने कहा सोना बहुत अच्छा तैयार किया तुमने, अभी उसमें नग लगा। नग अर्थात कौन सा नग लगा? नग है प्रत्यक्ष प्रमाण, नग है प्रत्यक्ष प्रमाण। उसमें भी वही बात कही, फिर कौन सा प्रत्यक्ष प्रमाण हो? शांति और शक्ति की अनुभूति का, उनको अनुभव करा दो बस। अभी तक वाह वाह करते, बस वाह वाह करने से नहीं, वारिस बन जाए, उनको लग जाए बस यही है जो है, इसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। नहीं तो अभी कल भी कोई हमसे मिला था शाम को, वो कह रहे थे हम ये भी करते हैं, पर वो जब घर वाले जो दूसरा करते ना वो भी अच्छा लगता है। सेंटर तो जाते हैं, पर जाते जाते बीच में हनुमान जी का भी मंदिर लगता है, और गणेश जी का भी मंदिर लगता है, और उसके सामने से ऐसे कैसे चले जाए, नाराज हो गए गणेश जी तो, और है तो शिव के ही पुत्र ना, तो क्या प्रॉब्लम है, लगा दो एक दो फूल चढ़ा दो, शिव बाबा थोड़ी ना बुरा मानेगा, भक्ति छूटी नहीं है। पर कल परसों मुरली में कहा था मैं भक्ति नहीं छुड़ाता हूं, चलने दो, नहीं तो इधर के ना उधर के। मैं ये नहीं कहता हूं कि भक्ति छोड़ो, पर ये जरूर करता है कि भक्ति से तुम्हारा कुछ फायदा नहीं हुआ, दुर्गति हुई है। हां, पर मैं ये नहीं कहता कि भक्ति छोड़ो, मैं ये नहीं कहता कि स्मोकिंग छोड़ दो, पर स्मोकिंग कैंसर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर ये नहीं कह रहा हूं कि भाई छोड़ो नहीं, चलने दो। तो बाबा ने कहा सोने का नग अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है संसार की आत्माओं को। वो शब्द बहुत सुन लिए उन्होंने, अब उन्हें सीधा अनुभव करा दो, ठंडा करो दो एकदम, शांत, शब्द ही खत्म हो जाए, प्रश्न ही समाप्त हो जाए। प्रश्न ढेर लेके आएंगे, जो प्रश्न लेके आता है वो ये भावना से थोड़ी आता है कि मुझे उसका उत्तर चाहिए, वो तो टेस्ट करने आता है कि तुमको पता है कि नहीं। पूछेंगे आप क्या सोचते हो सृष्टि चक्र के बारे में, कुछ खबर है आपको? फिर आप चालू करोगे अपना सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, बस फंस गए, क्योंकि अब उसके पास शास्त्रों की बातें हैं, शास्त्रों के प्रमाण है, तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है 5000 साल का, 5500 क्यों नहीं है, बोलो उत्तर क्या है। तीन हजार बोलो तो भी, इन प्रश्नों के कोई उत्तर, ये डिवाइन रेवल्यूशन है, ये सीधा परमात्मा ने आकर बताया, उसमें कोई तर्क नहीं हो सकता है, वो फाइनल है, क्योंकि जो बताने वाला है वो इस चक्र के बाहर है, वो यहां से बता रहा है, और जो पूछने वाले है वो इसके अंदर है, तो ये तर्क ही करते रहेंगे बस, डायनासोर का क्या हुआ, कार्बन डेटिंग का क्या प्रॉब्लम क्या हुआ, ये बताओ पिरामिड लाखों वर्ष के उनका क्या हुआ, तो ये सारे प्रश्न इनका बताओ आप क्या है, क्या उत्तर है? तुम 5000 साल का बोलते हो, इतना पूरा इतना महान चक्र 5000 साल में समेट लिया, सतयुग की आयु उसमें इतनी गिनी हुई है, आत्मा इधर इधर पूरे शरीर में व्याप्त है, सारे शरीर में व्याप्त है आत्मा, ये यहां से कहां फैलाया, कोई कहता है इधर है दिल में है, कोई कहता है ये जो बाल है इसका जो टिप है उसके 1000 भाग करो उसका 1 भाग आत्मा है। ऐसा अगर माइक्रोस्कोप ढूंढ लो तो सूक्ष्मदर्श यंत्र तो दिख सकती है, ऐसा भी कहा है। तो ये प्रश्न की कोई उत्तर नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? आत्मा आ जाए प्रश्नों के साथ और क्या हो जाए, शांति हो जाए, प्रश्न ही भूल जाए, प्रश्न ही खत्म, भूल ही जाए क्या प्रश्न लाया था वही पता नहीं, और फिर बाबा जो कहे बस यही है यही है यही है यही संपूर्ण सत्य है, ऐसा अनुभव हो जाए। तो नग क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। और हां यहां पे फिर बाबा ने कहा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या क्या है, इस पर थोड़ी 2-3 बातें कही है। सबसे पहला तो प्रत्यक्ष प्रमाण है नहीं, ये सब करने की विधि क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण कहो या हल चलाना कहो, ये सब करने की विधि क्या है? विधि है सबसे पहला तो एक संकल्प में स्थित हो जाए, ये तुम जो भी प्रोग्राम करते हो, स्टेज की रूपरेखा करते हो, इसमें एडिशन करो शांति और शक्ति का अर्थात अनुभव का, और दूसरा तुम्हारा लक्ष्य अनुभव करने का हो, संघ का रंग लगाओ, और फिर ये एक तीसरी बात यहां कही है, एक संकल्प की ईट। सबके अलग अलग संकल्प ना हो, सबका एक ही संकल्प हो, अगर एक का भी संकल्प चला तो फिर गड़बड़ होगी। जैसे सबसे पहली बार यहां कॉन्फ्रेंस हुई थी 83 में ये, और उस पर संडे की मुरलियां भी चली थी ना, पहली कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस क्या नाम था, पीस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो 83 में कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत ज्यादा सफलता हुई, और पर उसमें एक गड़बड़ हुई, सबने जी जान लगा के सेवा की, सब सेवाधारियों ने, सारे मधुबन निवासियों ने, सब ने, परंतु अंत में महिमा किस किस की हुई, जो स्टेज पर थे और जो स्पीकर थे, बाकी इनको लगा हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, ये भी हो गया, हमने इतनी सेवा की, हमारा यज्ञ हमारे, पर महिमा हुई उनकी जिन्होंने भाषण दिए, हमारा तो नाम ही नहीं आया कहीं, इधर चोट लग गई छोटी सी एक हल्की सी मीठा सा आघात हो गया, हम कहां हैं? तो पापा ने कहा संकल्प ईट है, तो दीवार के लिए एक एक ईट का महत्व है, हमको तो चाइना वॉल खड़ी करनी है, माया अंदर ना आ पाए, ऐसी चाइना वॉल इतनी बड़ी इतनी विशाल स्पिरिचुअल चाइना वॉल, ताकि शत्रु अंदर ना आ पाए, अगर इसमें एक भी कमजोर रहेगी ईट तो माया क्या करेगी, फिर बस उसी को सेंध लगा के उसी से अंदर घुसेगी। तो एक संकल्प की ईट, फिर कहा संघ का रंग लगाओ, एक संकल्प हो सबका, वायुमंडल शक्तिशाली हो, वातावरण को शक्तिशाली बताओ बनाओ, सारे वातावरण में एक ही लहर हो शांति की शक्ति की, ऐसी लहर फैलाओ कि जो भी आ जाए उसको अनुभव हो जाए। और तीसरी बात पांचवी बात है अनुभूति का झरना, बाबा ने झरने का उदाहरण दिया है, जैसे झरने के समीप कोई आता है तो उसको शीतलता का फ्रेशनेस का अनुभव होता है, वैसे यहां पर भी आत्माएं आ जाए झरनों का अनुभव हो जाए। और एक उदाहरण दिया है साइंस का, जैसे एसी लगा दो कितनी भी गर्मी बाहर है अंदर ठंडा, या तो हीटर चला दो बाहर कितना भी ठंड इधर गर्म, तो ये तो चमत्कारी हो गया। वो जगदीश भाई जी से किसी ने ठंड के सीजन में कहा था भाई जी हमारे कमरे में हीटर नहीं है, उन्होंने कहा योग का हीटर लगाओ अग्नि का हीटर जलाओ तो हलचल का हल, शांति का तीर चलाओ, सोने का सोने में नग लगाओ, एक संकल्प की ईट और अनुभूति का झरना। इसमें और वो संकल्प दृढ़ हो इसकी ट्रायल करो और सबका आपस में सहयोग हो तब ये कार्य पूरा होगा। और जो सभी आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाना, ये फल है, मतलब फसल, ये फसल है उसकी। और बाबा ने कहा कॉन्फ्रेंस बहुत कर ली, शिविर बहुत कर लिए, शंकाओं का समाधान बहुत कर लिया, अब वो करो जो करना है। जैसे महाभारत में दिखाया है श्री कृष्ण और उसका भाई बलराम सांदीपानी के आश्रम में रहते हैं कंस वध के उपरांत शिक्षा लेने के लिए, और वहां पर फिर अचानक एक दिन परशुराम आ जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं आपने बताया भी नहीं कि आप आने वाले हैं। वो कहता है मैं तुम्हारी आज्ञा से आया हूं। और परशुराम उसको कहता है लीलाएं बहुत कर ली, रास बहुत कर लिया, माखन बहुत खा लिया, अब वो करो जो करने आए हो। लीलाधर अब वो करो जो तुम करने आओ, संभालो अपना सुदर्शन। वो सुदर्शन चक्र उसको वहां देता है, मैंने मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूं, कब तक रहूं, कब से रुका हुआ हूं तुम्हारे आने के लिए। तो मुरलियां बहुत सुन ली, नोट्स बहुत लिख लिए, योग अमृत वेला भी बहुत कर लिया, सेवाएं भी बहुत कर ली, ज्ञान बहुत सुना लिया, कोर्स बहुत करा दिया, वो करो जो करना है, आत्माओं को अनुभव कराओ। आत्मा आए और उसको अनुभव हो जाए, यहां आने से पहले ही आत्माओं के मन की बुद्धियों में बीज डाल दो अनुभव का, ज्ञान का, सकाश का, यहां बैठे बैठे ही, चाहे हम उनके सामने आए या ना आए, एक ही स्थान पर बैठकर सारे विश्व की सेवा की जा सकती है। बीच में एक संकल्प हमने दिया था, कौन सा, मैं इस धरती का केंद्र हूं, बहुत पावरफुल संकल्प है, इस संपूर्ण सृष्टि का मैं केंद्र हूं। योग में यह संकल्प लाना है कि इस संपूर्ण सृष्टि का मैं केंद्र हूं, मुझसे शक्तियों की किरणें फैल रही है, मुझसे प्यूरिटी की किरणें पूर्ण ब्रह्म कायनात में फैल रही है, सब जगह जा रही है। जो आत्मा एकदम दूर है इधर, संपूर्ण देहवान में, संपूर्ण विकारी, जो परिधि पर डोल रही है, उसको भी चुंबक की तरह खींचकर केंद्र में लाना है। तो मैं इस सृष्टि का केंद्र हूं, आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सब कुछ मेरे पर है, मैं हिल गया तो ये यहां जो है ना बेचारे धड़ाधड़ नीचे गिरेंगे, यहां वहां, इसके लिए मुझे बहुत शक्तिशाली अटल अचल रहना होगा यहां पर, और सारी आत्माओं को सकाश देना है, एक एक आत्मा को, कोई भी नहीं छूटनी चाहिए, बड़े छोटे सब, सभी को सकाश की आवश्यकता है। महारथी गिने चुने, उस दिन कहा था महारथी भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किसमें, नाम रूप में। मैं इस सृष्टि का केंद्र हूं, इस संकल्प को बार बार रिवाइज करना है, मैं इस सृष्टि का केंद्र हूं, मुझसे सारे सृष्टि में पवित्रता फैल रही है, शक्तियां फैल रही है, एक भी बचना ना पाए, कोई बचाए अपने आप को, भागे पर तीर ऐसा चलाओ कि वो रोक ना पाए अपने आप को, ऐसा वैराग का तीर चलाओ कि कितने भी राग के कंबल ओढ़ ले, कवच धारण कर ले, ऐसा तीर चला दो कि बस घायल, कोई कितना भी अपने आप को बचाए, एक घायल हो गया दूसरा अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा हो, उसको भी बता देना कि जिस तीर ने उसको घायल किया है वो तीर अभी भी हमारी तुनीर में है, इसके लिए भागने की कोशिश मत करो, हमारी तरकश में अभी भी वो तीर है, इसके लिए कोई भी नहीं छूटना चाहिए, और सभी को परमधाम भेजना है हमको, बहुत बड़ा काम है। कोई कहे हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, उनको भी बोलो जिस मार्ग से दूसरे गए वो मार्ग अभी भी खुला है, तुम बच नहीं पाओगे। तो ये प्रत्यक्षता के कार्य है, तो हमें हल चलानी है, हम रूहानी किसान हैं, हमें हल चलानी है, हमें क्या करना है, और शांति का तीर, तो हम तीरंदाज भी है, आर्चर, किसान भी है तो तीर चलाने वाले भी है तो सुनार भी है, क्योंकि क्या करना है, सोने में नग, और संकल्प की ईट अर्थात ईट कौन करता है, बड़ाई मिस्त्री कुमार, और अनुभूति का झरना हमें तैयार करना है, अनुभूति का झरना, झरना कौन तैयार करते हैं, गार्डनिंग वाले, नेचुरलिस्ट जो नेचर लवर्स होते हैं उनको ये सब में बहुत प्रेम होता है। तो हमें झरना तैयार करना है, शीतल झरना, ऐसा झरना कि जो आ जाए और बस जीवन बन गया है रसवंती, जब ज्ञान रस जो पिला दिया तो रसवंती तैयार करनी है, झरना बहाना है। तो ये सारे कार्य है। अच्छा, ओम शांति।
वही है मधुबन, वही है ये बहने, वही शीलुबा, मगर चलते फिरते नजर ना वो आते है साकारुबा। वही है मधुबन, वही है ये बहने, वही शीलुबा। वही है मधुबन का बगीचा प्यारा, मिला था जहाँ एक दिलों का सहारा। वही है मधुबन का बगीचा प्यारा, मिला था एक दिलों का सहारा। वो मीठा सा प्यारा वो बाबा हमारा, दिया था जिसने अनोखा ही प्यार। वही है मधुबन, वही है ये बहने, वही शीलुबा। वही है मधुबन का आंगन प्यारा, जहाँ सैर करता था बाबा हमारा। वही है मधुबन का आंगन प्यारा, जहाँ सैर करता था बाबा हमारा। लेकर हमको साथ ले, हाथों में हाथ कराते थे ज्ञान का वो श्रृंगार। वही है मधुबन, वही है वो बहने, वही शीलुबा।